भर लेती है जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी बाबा।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में जब बाबा के बच्चे आते हैं तो बाबा कहते थे ये मधुबन का श्रृंगार आ गया है। तो आप सभी विशेष सेवा के निमित्त अथवा कहें बाबा से मिलन मनाने के लिए, वरदानों से अपनी झोली भरने के लिए अपने बाबा के बेहद घर में मधुबन में सभी आए हो। आते ही यहाँ के पवित्र और तपस्या के वाइब्रेशन थकान को दूर कर देते हैं। अनेकों आत्माएं चाहे वो पहली बार आई हैं, आती हैं, आते ही अनुभव करती हैं कि बहुत सुखद वातावरण है, सुख की अनुभूति करते, शांति की अनुभूति करते। मैंने जितने भी अनुभव इस बार पढ़े हैं, देखे हैं, दो कॉन्फ्रेंस अभी लगातार हुई हैं, आज के अनुभव तो आप सबने शायद सुने हो। महामंडलेश्वर सन्यासी संत महात्माओं के, उनके दिल के भी उद्गार कैसे थे। लेकिन जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें करीब 3,500 डेलीगेट्स थे, आज मैं उनके अनुभव पढ़ रहा था, एक एक का अनुभव सुनने जैसा है। यहाँ रहने वालों को कई बार इस भूमि के इतने ऊंचे महत्व का भान नहीं रहता, लेकिन आने वाली आत्माएं अपने अनुभव में यही लिखती हैं कि हम तो बाबा के इस घर में आकर के सुख का, स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा स्थान दुनिया में हमने कहीं भी नहीं देखा। यहाँ की पवित्रता, यहाँ की स्वच्छता, और इस बार तो कईयों ने जो यहाँ योग सिखाया जा रहा है, क्लासेस चलती हैं, उसकी भी बहुत प्रशंसा की है। भोजन की भी बहुत महिमा लिखते हैं, एक एक बात जो उनको अच्छी लगती है। कईयों ने लिखा है सजेशंस मैं क्या दूं, मैं बहुत छोटा हूँ, सुझाव नहीं दे सकता। और ऐसे सुंदर अनुभव करके जब जाते हैं, कई सरपंच इसमें थे और भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने लिखा है कि हम अभी अपने गांव में जाते ही बाबा का केंद्र बनाएंगे और पूरे गांव को एक आदर्श गांव, गोकुल गांव बना करके दिखाएंगे। तो जब सेवा की ऐसी रिजल्ट दिखाई देती है, इस बाबा की तपोभूमि का कुछ वरदान है, चमत्कार है, यहाँ जो भी आत्मा आती है उसे कोई न कोई अच्छी प्रेरणाएं, अच्छे अनुभव अवश्य होते हैं, और वो अपने अपने शब्दों में व्यक्त भी करते हैं, और सेवा केंद्रों पर जाकर के बहुत अच्छे मददगार बनते हैं। कई बाबा के बच्चे बन करके अपना वारस पूरा वर्षा भी ले लेते हैं, वारिस भी बन जाते हैं। इस महामंडलेश्वरों के सम्मेलन में भी कई संतों ने कहा कि हम अपने आश्रम में अभी ये ज्ञान देना शुरू करेंगे, बहनों को बुलाएंगे। तो आप सभी समझ सकते हो कितनी फास्ट गति से बाबा अपनी सेवाओं की प्रत्यक्षता, अपने बच्चों की प्रत्यक्षता कर रहा है, कितना बेहद का विस्तार होता जा रहा है। समय अनुसार जैसे जब नगाड़ा बजने का समय आता है, जय जयकार होने का समय होता है, तो सबके दिल में वो आवाज आती है, यही है यही है, ऐसा स्थान ऐसा ज्ञान कहीं नहीं देखा कहीं नहीं सुना। तो हम सभी बाबा के कार्यों को देख करके दिल ही दिल में बाबा के गुणगान करते हैं, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा है, बच्चे क्या करते हैं। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया हुआ है, चाहे किसी भी स्थान पर हम जाएं, निमित्त मात्र सेवाधारी अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन जो यहाँ के सुंदर वाइब्रेशंस हैं, अथवा कहें जो बाबा ने तपस्या की है, जो ब्रह्मा बाबा की संकल्प की शक्ति है, उस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का प्रभाव और उसका प्रवाह इस वायुमंडल में चारों ओर गूंज रहा है, इसलिए आत्माएं आते ही बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करती हैं। तो आप सभी बाबा की इस तपोवन में, इस शांति वन में सेवा के लिए जो आए हैं, बाबा से मिलन तो मनाएंगे, लेकिन सेवा करते हुए हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाए, क्योंकि ब्राह्मणों के कदम कदम में पद्म है, और इतनी श्रेष्ठ पद्मा पद्म भाग्यवान आत्माएं इस भूमि पर आकर के भी अगर पद्मों की कमाई न कर पाए, कहीं भी समय श्वास संकल्प व्यर्थ चला जाए, तो आए हुए भाग्य को कहेंगे मिला हुआ भाग्य, और वो भी हमने न समझ कर न पहचान करके गंवा दिया। तो हम सभी किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, जो ये भूमि हम सबको कदम पर कदम उठाएं और पद्मों की कमाई जमा हो जाए। तो बाबा एक तो हम सबको कहते हैं, बच्चे जो कदम उठे जो कर्म करो उसमें बाबा की याद समाई हुई हो, इतना प्यार से बाबा को याद करो, सिर्फ नियम पूर्वक नहीं। कई बार नियम पालन करते हैं, जल्दी जल्दी उठ करके समझते हैं अमृत वेला हुआ है, भाग भाग करके योग में आ जाते हैं, लेकिन योग में बैठते समय जो स्थिति होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो बाबा के प्रति इतनी अटूट प्यार और श्रद्धा होनी चाहिए, जिसमें अपने आप अनुभव होने लगे कि बहुत अच्छी कमाई करके मैंने इस योग में अनुभव की, कमाई करके आया, ऐसे ही समय न बीत जाए। तो सबसे पहले यहाँ की इतनी सुंदर दिनचर्या के अंदर ध्यान तो हम सभी रखते ही हैं, लेकिन जो दिनचर्या बनी हुई है, बाबा कई बार कहते हैं एक्यूरेट याद और एक्यूरेट सेवा के लिए तीन बातों की जरूरत है। एक, बहुत संकल्पों में धैर्यता चाहिए, ज्यादा हलचल नहीं, अचल स्थिर। दूसरा बाबा कहते हैं अंतर्मुखता, गंभीरता चाहिए, और तीसरा समझ चाहिए, समझ। हम सभी जितने भी बाबा के बच्चे हैं, मैं समझता हूँ योग जो कर रहे हैं, करते हैं, वो बहुत समझ से करते हैं, अंधश्रद्धा से नहीं करते। जैसे भक्तिमय भावना के आधार से लोग चलते हैं, बिना एड्रेस के, बिना पते के भगवान को याद करते हैं। जाना है मंदिर के अंदर, मन लगे या न लगे, घंटी बजा करके फूल चढ़ा करके आ जाएंगे। मन भटक रहा है और मंदिर में गए, मूर्ति के पैर छू लिए और समझ गए हम पूरा किया अपना कार्य। हम सभी की बुद्धि में जब कमाई शब्द आता है, जैसे आज बाबा ने कहा, जब कमाई होती है तो उसमें थकावट नहीं होती। कभी भी कोई बिजनेसमैन ये नहीं सोचता है कि हमारे पास अभी ग्राहक नहीं आया तो हम दुकान बंद कर दें, बैठा रहता है, अपने आप आएगा, आह्वान करता रहता है। तो हम सभी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। कई बार बाबा कहता है तुम्हारे जैसा तो दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जिसके कदमों में पद्मों की कमाई होती हो। तो हम सभी जब बाबा की याद में बैठते हैं तो इतने संकल्प धैर्यवत हों, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं, भाग दौड़ नहीं। कई बार जब भीड़ होती है तो भोजन पर भी भाग दौड़ होती है, हर स्थान पर क्यू में खड़ा होना पड़ता है तो कई लोग उस क्यू को उल्लंघन करके आगे जाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी थाली ले लें, जल्दी जल्दी भोजन ले लें, और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं भोजन खुट जाएगा या मिलेगा ही नहीं। तो एक ने अनुभव में सजेशन लिखी है कि जैसे सब जगह पर एकाग्रता और शांति का अनुभव होता है, ऐसे भंडारे में भी होना चाहिए जहाँ भोजन मिलता है, क्योंकि भोजन का स्थान ऐसा है जहाँ बहुत जल्दी आवाज सुनाई देने लगती है, और जब लेने वालों में जरा भी अधैर्यता होती है भाग दौड़ मच जाती है। तो आप सभी सेवा तो करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितना हो सके शांति का ऐसा वायुमंडल रहे, हर स्थान पर, हर जगह पर लगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे वाइब्रेशन शांति के हैं, योग के हैं। तो जो निमित्त सेवाधारी हैं, सबसे पहले तो उनको व्रत लेना पड़ेगा। आने वाले तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर वो सेवाधारी अपनी आंतरिक स्थिति को धैर्यवत रखते हैं, बहुत शांत स्वरूप होकर के रहते हैं, कई कंट्रोल भी करते हैं तो आवाज में आकर के करते हैं, कंट्रोलर को बहुत शांत स्वरूप स्थिति से, मुस्कुराते हुए चेहरे से, अपने आप ऐसा स्थिति से, स्वरूप से बता दो जो शांत हो जाए। तो ये प्रयोग करके देखना कि वो आत्माएं जो भी आए, क्योंकि मिक्स क्वालिटी की आ रही हैं, एक जैसी नहीं है सभी, कई हैं जो अच्छी धारणाओं में बहुत अच्छे योगी बाबा के बच्चे हैं, और कई बाबा के घर में देखने के लिए आते हैं, बहनें ले आती हैं कि जाएंगे तो वहां जाके पक्के हो जाएंगे। तो कच्चे और पक्के दोनों जब मिक्स आते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनके संकल्प, उनके वाइब्रेशन भिन्न हो जाते हैं। इसलिए जो सेवाधारी हैं, सबसे पहले उनको अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, और उस श्रेष्ठ स्थिति से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से आने वाली आत्माओं को कुछ नवीनता का, आध्यात्मिकता का, एक अलौकिकता का अनुभव कराना है। लौकिक तो दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक स्थान हैं, लेकिन ये बाबा का घर अलौकिक है, न्यारा है, और यहाँ से ही सबको शक्ति और सकास मिलनी है, खुद के लिए शक्ति जमा करे और सबको सकाश देने के निमित्त बन जाए, तो हम सभी शक्तियां भी जमा करेंगे, वरदान भी बाबा से लेंगे, क्योंकि संगम युग पर बाबा वरदानों से हम सबकी पालना कर रहे हैं। जब मैं अभी अभी आ रहा था, संकल्प आया कि कैसे बाबा की पालना अव्यक्त रूप में वरदानों से हो रही है, और वो वरदान जो बाबा सिर्फ तथास्तु कह करके नहीं देता है, लेकिन उन वरदानों को प्रयोग में लाने की सुंदर विधियां भी सिखाता है। ऐसे नहीं कह दिया बच्चे अमर भव, विघ्न विनाशक भव, सफलता मूर्त भव, मेहनत मुक्त भव, माया जीत भव, भव तो कह दिया, लेकिन कहने से मैं बन गया। बाबा ने मान लो मुझे पर्सनल भी ये वरदान दिए, बच्चे माया जीत भव, तो क्या बाबा के इस वरदान से मैं माया जीत बन जाऊंगा? या बाबा एक किसी बच्चे को कहता है ये विघ्न विनाशक भव, वो विघ्न विनाशक बन जाएगा? ठीक है, बाबा ने कहा है तो कुछ होना तो चाहिए, लेकिन हमारे इस विद्यालय में और अन्य संस्थाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर चमत्कार शब्द नहीं है, रिद्धि और सिद्धि नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि है। चमत्कार नहीं है कि आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया तो हो गया, लेकिन जो कुछ कहा है उसकी विधि सुनाई है, जो वरदान दिए हैं उस वरदान को प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने की विधि सुनाई है, और उन विधियों को अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो वरदान हमारे जीवन से दिखाई देते हैं। सिर्फ ऐसे ही वरदान दे दिया और हो गया तो छू मंत्र वाली बात हो गई, पढ़ाई नहीं हुई। तो बाबा कहता मैं ऐसा छू मंत्र तो करता ही नहीं हूँ, कह दूं और तुम बिना मेहनत के, बिना कोई पुरुषार्थ के और बन जाओ, उसके लिए कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। कदम आपका है, मदद बाप की है, हिम्मत आपकी है तो मदद बाबा की है। अगर कदम ही कोई नहीं उठाए और कहे बाबा ही सब कुछ कर दे, तो बाबा कहता मैं ऐसा कार्य तो करता ही नहीं हूँ, भले मैं रहम दिल हूँ, मेहर करता हूँ, कृपा करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, लेकिन कृपा और आशीर्वाद भी मेरी ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ यही मेरी आशीर्वाद है। अगर तुम बच्चे पढ़ लोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखोगे, तो आशीर्वाद काम में आएगी। और अगर मन मत चलाते रहे, परमत पर चलते रहे, तो आशीर्वाद कितनी भी मिले लेकिन वो आपके जीवन में दिखाई नहीं देगी। इसलिए जो पांच वरदान मैं अभी आपको सुना रहा था, उनके पीछे विधियां भी बताई हैं बाबा ने। जैसे अगर इस ब्राह्मण जीवन में अमर भाव का वरदान लेना है, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हैं, और जो बाबा के घर में आ जाता है, एक बार बाबा को पहचान लेता है, निश्चय हो जाता है, फिर अगर चलते चलते कोई कारण से कहीं डिस्टर्ब हो गया, कहीं मन उदास हो गया, कहीं माया ने थप्पड़ लगा दिया, कोई संशय आ गया, कोई टकराव की स्थितियां पैदा हो गई और बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो बाबा कहता है इसकी ब्राह्मण जीवन में अकाले मृत्यु हो गई। अकाले मृत्यु यही होती है, जैसे उस अकाले मृत्यु को दुखद घटना कहते हैं, एक्सीडेंटल मौत हो जाए किसी की तो बड़ा दुख महसूस होता है, ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका कार्य कर्म थे। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर कोई चलते चलते, कल बाबा एक शब्द कह रहे थे, साकार मुरलियों में कई बार इतने कड़े शब्द बाबा के आते हैं, ध्यान जाता है कि बच्चे कई ऐसे हैं जो दुख देते हैं, दुख लेते हैं, वो दुखी होकर मरेंगे, और फिर कह दिया कई हैं जो भागंती हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब ये कोई बाबा श्राप नहीं दे रहा है, बाबा हमको समझाने दे रहा है, समझानी है, ये इशारा है कि बच्चे अगर कोई भी आत्मा एक दूसरे को दुख देती है, अंदर ही अंदर पीड़ित करती है, करे किसी को परेशान करती है, तो जब बददुआओं का स्टॉक बहुत हो जाता है तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं पर भी माया ऐसा थप्पड़ न लगा दे, ऐसा कोई कुकर्म न करा दे किसी की आह से, क्योंकि कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहते हैं कि हम संपूर्ण विजयी बनकर दिखाएं, लेकिन चलते चलते परवश स्थिति हो जाती है, आत्मा कर्म इंद्रियों के गुलाम बन जाती है, तो चाहता नहीं हूं क्या करूं। और बाबा का ज्ञान भी सुन रही है, मुरली भी सुनने जाती, योग भी करती है, बाबा बाबा भी कहती है, लेकिन चलते चलते कोई न कोई अवज्ञा भी हो जाती है, फिर मन अंदर अंदर खाता है, सोचते हैं क्या अभी बाबा की मुरली रोज सुनता हूँ, धारणा तो होती नहीं, इसे तो न सुनना अच्छा है। फिर बाबा का जो पढ़ाई का कोर्स है, मुरली है, योग है, उससे भी कई छोड़ देते हैं। इसको बाबा कहता है कि बाबा का बनंती सुनंती कथंती, दूसरों को सुनावंती और फिर भागंती। कहीं भी चलते चलते ऐसी गति हमारी न हो, इसलिए बाबा हमको वरदान देता है बच्चे अमर भव। इस ब्राह्मण जीवन में कोई भी प्रकार से बाबा का हाथ और साथ न छूटे, सदा हम बाबा के बन करके रहें, बाबा की आज्ञाकारी हो करके रहें। उसके लिए इस वरदान के साथ विधि बाबा ने सुनाई है, बैलेंस और सच्चाई। अगर बैलेंस से कोई आत्मा चलती है इस ब्राह्मण जीवन में, याद और सेवा का बैलेंस है, कर्म और योग का बैलेंस है, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस है, अगर बैलेंस ठीक रहता है, कई बार हमारा बैलेंस नीचे ऊपर हो जाता है, व्यवहार में जाते हैं तो इतना लग जाते हैं जो कहते हैं क्या करूं, फुर्सत ही नहीं है, सेवाओं में लग जाते हैं तो स्व स्थिति में स्थित रहने की, योग करने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतना लग जाते हैं तो अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरों के लिए ही सब कुछ है, ये बैलेंस नहीं है। और कई इतना योग करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, जो सेवा के लिए कहते फुर्सत नहीं है, मेरे को तो योग करने दो, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। ठीक है, कई बार योग करते करते भी क्या होता है, खिसक जाती है बुद्धि, अनेक आत्माओं की छाया पड़ जाती है, बहुत साइलेंस में जाने से वो और डीप चला जाता है, कॉन्शियस भी उसकी काम नहीं करती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे हर कर्म में हर बात में बैलेंस जरूरी है, योग भी करो सेवा भी करो। कई मौन रखते हैं, बोलना ही बंद कर देते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, बाबा कहता चुप रहना चाहिए, चुप रहो, बोलना ही बंद कर देते हैं। अब बोलने के लिए बाबा कहता बच्चे मुख ही बोलने का साधन मिला है, इसे सेवा करो, बोलो इतना जितना जरूरी आवश्यक है, फालतू व्यर्थ बातें नहीं बोलो, बाकी चुप रहो। तो बैलेंस सिखाया है, लेकिन कई आत्माएं अपने मन को अपनी मत ऐड करके उसमें और अपने मन से पुरुषार्थ करना शुरू कर देती है। बाबा जो सिखा रहा है कि बच्चे बैलेंस से चलो, वो बैलेंस टूट जाता है, और जब बैलेंस टूटता है तो आप समझ सकते हो उसकी जीवन की गति क्या होगी। लौकिक जीवन में भी बैलेंस को एक कला माना गया है, बहुत बड़ी कला है, नट लोग कला दिखाते हैं, बैलेंस की ही कमाल है। हमारे इस ज्ञान मार्ग के अंदर भी हर बात का बैलेंस जरूरी है। कोई रोज नींद त्याग करके कहे बाबा, तो कहता है बच्चे रात भर योग करो, तपस्या करो, बैठ जाओ, कब तक करेगा। नींद भी चाहिए शरीर को, भोजन भी चाहिए, समय पर भोजन समय पर नींद। लेकिन ऐसा नहीं सोता ही रहे कि इसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, चलो सो जाओ, क्या होगा, बैलेंस रहेगा? हर बात में बैलेंस जरूरी है। और जो इस जीवन में बैलेंस से चलना सीख जाता है, ध्यान रखता है कि हमें योग भी करना, समय पर करना है, समय पर सोना है, समय पर खाना है, तो उसका बैलेंस वाला जीवन सदा काल चल सकता है। अनबैलेंस हो गया, अगर एक तरफ झुकाव हो गया अधिक, तो दूसरी तरफ का पलड़ा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को अमर भव का जब वरदान देता है तो कहता बैलेंस में रहने वाले बच्चे अमर भव। सच्चाई और सफाई दूसरा एक आधार है, क्योंकि कई आत्माएं अपने किए हुए कर्मों को, जो कुछ अवज्ञाएं हो जाती हैं, उनको छिपाती हैं, और छिपाते छिपाते वो पाप वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। एक भूल की, दूसरी की, तीसरी की, और उसकी सजाएं बनती जाती है। वो कहते कोई जानता थोड़ी है, कोई देखता थोड़ी है, पता थोड़ी चलता है। लेकिन अगर वो सच्चा स्थाप नहीं है बाबा के साथ, बड़ों के साथ, निमित्त आत्माओं के साथ, अगर उसकी कथनी और करनी समान नहीं है, वो अधिक समय नहीं चल सकता है। कुछ दिन झूठ छिप सकता है, लेकिन अगर वो सदा काल एक आधार ही बना ले, हर बात में झूठ बोलना शुरू कर दे, छिपाता रहे, झूठ बोलता रहे, चलाता रहे, तो बाबा कहते हैं कि वो कब तक ब्राह्मण जीवन में जिंदा रहेगा। इसलिए अमर भव के वरदान के लिए सच्चाई और सफाई अंदर और बाहर एक, ऐसे नहीं अंदर से अलग है और बाहर से दिखावा अलग है। इसलिए कोई भी वरदान, जैसे विघ्न विनाशक का वरदान बाबा हम बच्चों को देता है, दूसरा कहता है समय पर समय आता है विघ्न विनाशक भव। लेकिन चलते चलते कई आत्माएं विघ्नों के इतने वशीभूत हो जाती हैं, जो विघ्नों में खुद परेशान और दूसरे भी परेशान, खुद का भी समय जाता और बड़ों का भी समय जाता है, छोटी छोटी बातों में खुद डिस्टर्ब हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, छोटी छोटी बातें ही। जो बाबा ने कहा ना, पहाड़ भी राई बन जाए और राई को पहाड़ बना देते, छोटी सी राई जितनी बात भी सोच सोच करके, सुना सुना करके, वर्णन करके, उसको पहाड़ का रूप अनुभव करते हैं और दूसरों को ऐसे वर्णन करते हैं जैसे इतनी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात को छोटा बनाना नहीं आता। विघ्न कई प्रकार के हैं, चाहे वो हिसाब किताब के अनुसार आते हैं, पुरुषार्थ में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से हम सहज पार हो जाएं, किस चीज की जरूरत है, क्योंकि विघ्नों का वार इस समय माया अपने रूप में कर रही है। बार बार कोई न कोई रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में विघ्न है, स्वभाव और संस्कार के रूप में विघ्न है, टकराव की स्थितियों में एक दूसरे से स्नेह की कमी के कारण विघ्न है, परिवार में भी विघ्न आते हैं। तो इन विघ्नों से पार होने की सहज विधि क्या है? सिर्फ बाबा अगर आपको कह दे विघ्न विनाशक भव, हो जाएंगे इसे? कैसे होंगे? विघ्न तो आते हैं ना, परिवार से भी आते हैं, समाज से भी आते हैं, सरकार से भी आ जाते हैं, अपने शरीर से भी आ जाते हैं, प्रकृति से भी आ जाते हैं, संगठन है जहाँ चार लोग रहते हैं वहाँ आपस में आ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत स्नेह होता है, चलते चलते अनुमान के कारण, वहम के कारण कई बार वो विघ्न का रूप बन जाता है, संगठन दूर हो जाता है, आपस में बोलना चालना भी बंद हो जाता है। और ऐसे ऐसे विघ्न आ जाते हैं जो लगता है क्या, जैसे दुनिया के जीवन यही जीवन ऐसी यही है। तो ऐसे विघ्न अगर कोई के सामने कोई आ जाए तो उनको पार करने की विधि क्या है? विघ्न विनाशक बनने का वरदान हमारे जीवन में आ जाए, क्या विधि है? सहन करें, अच्छा, बड़ों को, बड़ा को छोटा कर दें, छोटा भी तो विघ्न है ना, पार करने की विधि क्या है? ड्रामा और साक्षी, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, कल्याणकारी है। अच्छा हाँ, जो आज बाबा ने कहा कि बड़े आप बन जाओ तो विघ्न छोटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और बिंदु लगा दें, बिंदु लगती नहीं है, फुल स्टॉप लगता ही नहीं, क्वेश्चन बन जाता है, क्या कैसे ऐसा भी होता है, क्या यहाँ भी ऐसे होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस की लाइन लग जाती है जो उनको उत्तर मिलता ही नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, हर बात में कहते हैं क्या किया जाए। लेकिन बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, जो तुम्हारा यादगार है श्री गणेश का विघ्न विनाशक के रूप में, वो नॉलेजफुल है। अगर मैं आत्मा नॉलेजफुल बन करके रहूं, एक ज्ञान सुनाना है, सुनना है, लेकिन एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है, फुल नॉलेज है अपने आप का, ड्रामा का, कर्मों का, हिसाब किताब का, हर एक के पार्ट का बहुत स्पष्ट ज्ञान है, नॉलेज है, हर एक के संस्कारों का भी ज्ञान है कि ये आत्मा के संस्कार हैं, भिन्न हैं, और ये कभी न कभी इमर्ज होने हैं, ये हिसाब किताब चुक तो करने का समय है। अगर ज्ञान को हम यथार्थ रीति से यूज करते हैं, प्रयोग में ले आते हैं, और साथ साथ परखने की तीव्र बुद्धि है, डिस्टर्ब वाली बुद्धि नहीं चाहिए, कोई भी विघ्न अगर आता है, क्योंकि कई बार भटकती हुई आत्माओं के द्वारा भी विघ्न आते हैं, कोई आत्मा ईर्ष्या के वश कुछ न कुछ करना चाहती, करती हैं उल्टा, उसके भी विघ्न हमें आगे बढ़ने नहीं देते, योग लगने नहीं देते, मन को बहुत चंचल बना देते हैं, भटका देते हैं, एकाग्र होने नहीं देते। अब ऐसे ऐसे विघ्न अगर आ जाते हैं, अगर हमारी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई तो वो विघ्न अपना वार कर देते हैं। इसलिए विघ्न ना आए, अगर आ जाए तो उसको हम सहज पार कर सकें, जरूरी है हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ और साफ हो, स्पष्ट दिखाई दे कि ये विघ्न क्यों आया है, कहां से आया है, और अगर आया है तो उसके कई कारण अगर खोजे जाएं तो अंदर के होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण एक मुझे दिखाई देता है जहां जहां ऐसे विघ्न सुनता हूं, वो कारण है व्यक्त और व्यर्थ वातावरण। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस सेंटर पर, जिस भी स्थान पर अगर कोई व्यक्त बातें चलती रहती हैं, ज्ञान और योग का वातावरण नहीं है, सदा योग की ज्वाला प्रज्वलित नहीं है, वहां पर विघ्न जरूर वार करते हैं। बाबा ने मधुबन का या किसी भी स्थान का एक नियम बनाया, साकार में बाबा से पूछते थे, बाबा जब आपकी छत्र छाया इस घर पर है, मधुबन पर है, तो रात को पहरा देने की क्या जरूरत है। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं, साकार में बाबा के सामने भी बहनें भी, जब भाई नहीं थे बहनें थी तो भी पहरा देती थी। जब बाबा की छत्र छाया है, भगवान की छत्र छाया है, तो पहरे वाले की क्या जरूरत है। तो बाबा ने अचानक एक दिन मुरली इस पर चलाई थी कि बच्चे जो पहरे पर रहते हैं, अगर वो योग युक्त हैं, योग का वातावरण है, तो दीपक जलता है, और दीपक जहां जल रहा है, प्रज्वलित है, वहां अंधेरा नहीं आ सकता। इसलिए 24 घंटे निरंतर योग की ज्वाला जलती रहे, जागृत अवस्था में कुछ बच्चों को पहरा देना चाहिए। इससे शत्रु तो आएंगे नहीं, लेकिन जो भटकती हुई आत्माएं हैं उनसे भी सेफ्टी रहेगी, कईयों के नेगेटिव वाइब्रेशन भी नहीं प्रवेश कर सकेंगे अगर योग की ज्वाला सदा जलती रहे तो। तो विघ्न विनाशक की स्थिति के लिए अथवा विघ्न विनाशक सेवा केंद्र को और स्थान को बनाने के लिए आवश्यक है वहां की निमित्त आत्माओं को खुद भी योग में रहें और चारों ओर के वायुमंडल को योग युक्त बनाएं। योग की ज्वाला निरंतर जलती रहे, वहां व्यक्त और व्यर्थ बातें, लौकिकता की बातें उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए। परखने की शक्ति भी जरूरी है, परख लो क्यों आया विघ्न, कहां से विघ्न आया, किस लिए आया। लेकिन परखना ही आवश्यक नहीं है विघ्न विनाशक बनने के लिए, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्थिति चाहिए। स्थिति अगर पावरफुल है, कुछ आत्माएं भी पावरफुल स्थिति में रहती हैं, वर्णन और चिंतन में नहीं जाते, कहीं वर्णन बहुत करते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, छोटी सी बात को भी बहुत बड़े रूप में वर्णन करके एक दूसरे को सुनाते हैं। होता इतना सा विघ्न है, छोटा सा बात, कोई बात होती है और उसको सुना सुना करके लंबी चौड़ी बना देते, कथा कर देते। अगर हम सचमुच अपने स्थानों को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं और अपनी स्थितियों को विघ्न विनाशक बनाना चाहते हैं, तो बाबा ये वरदान तो देता है, लेकिन साथ साथ कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनो, परखने की शक्ति को धारण करो और पावरफुल बन करके योग की ज्वाला निरंतर प्रज्वलित रखो। अगर ज्वाला योग की है तो आएंगे विघ्न और दूर से चले जाएंगे, भाग जाएंगे, उन्हें भी लगेगा कि यहाँ पर कुछ है, अग्नि है, जल जाएंगे। तो योग की अग्नि अनेक विघ्नों को सहज पार कर देती है। सिर्फ विघ्न विनाशक कहने से विघ्न विनाशक बन नहीं जाएंगे। इसलिए जितना हम सब अपने संकल्पों पर ध्यान दें, योग पर ध्यान दें, उतना स्थान को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। वर्तमान समय बाबा की मुरली की एक लहर चल रही है, कई वर्षों से, 4-5 वर्षों से, हर एक बच्चा मेहनत मुक्त बने। बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत कर रहा हो, योग लगाने की मेहनत करता हो, पुरुषार्थ में मेहनत करता हो, इन विकारों को जीतने में मेहनत करता हो, क्या करूं, एक विकार जाता है दूसरा आ जाता है, कोई सताने लगता है, कोई जलाने लगता है, कोई भटकाने लगता है, बहुत सारे हैं ना, उल्टा लटकाने भी वाला है। तो अगर कोई विकार सता रहा है, जला रहा है, भटका रहा है, फंसा रहा है या वो लटका रहा है, उन सब विकारों पर सहज विजय हो जाए, मेहनत न करनी पड़े, युद्ध न करनी पड़े, सहज हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लें, सहज वो संस्कार हमारे चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। किसका है भाई बेटा है, बेटी किसकी है, यहाँ नहीं इसकी मम्मी। तो बाबा हमेशा कहता है जब मेहनत मुक्त का वरदान देता है, तो मेहनत से मुक्त होने की विधि है मोहब्बत में रहना। अगर हमारा बाबा से सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, बहुत दिल से हम बाबा कहते हैं, तो बाबा कहता है बच्चे कोई भी दिल से बाबा कहे तो बाबा हाजिर हो जाता है, मेहनत समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की माया आपको परेशान कर रही हो, कोई भी स्वभाव संस्कार का विघ्न आ रहा हो, मेहनत में डाल रहा हो, योग लगाने में भी मेहनत लगती हो, तो सच्चे दिल से बाबा को याद करो, प्यार से कहो मेरा बाबा, मेरापन उसमें अनुभव हो, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला योग नहीं, लेकिन एक श्रद्धा भावना से दिल से कहो मेरा बाबा। और जो दिल से सच्चाई से मेरा बाबा कहते हैं, बाबा की करंट उसके पास आती है। याद अगर यथार्थ है तो उसकी निशानी है कि बाबा की करंट का अनुभव होने लगेगा, और बाबा की करंट अगर आ गई तो माया अपने आप भाग जाएगी। करंट लगती है तो भाग जाते हैं ना, लेकिन करंट नहीं है तो माया प्रवेश कर जाती है। तो अपने अंदर बाबा की याद की करंट अनुभव करो, और वो करंट अगर आ रही है तो माया दूर से ही ऐसे लगेगा आई और गई, कोई भी विघ्न कोई भी समस्या ठहरेगी नहीं, मेहनत का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मोहब्बत में, बाबा के प्यार में समाने का अनुभव। योग भी क्या है, सिर्फ चिंतन नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, लेकिन इतना दिल से प्यार से जो कुछ बाबा ने हमें दिया है, प्राप्तियां कराई हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, बहुत शुक्रिया के रूप में बाबा को प्यार से याद करना। क्या से क्या बना दिया, कैसे कीचड़ से निकाल लिया, कैसे अपने नैनों पर बिठा लिया। आज भी बाबा कहते थे कहां पैरों की जूती, लोगों ने समझा क्या और आपको बनाया क्या भगवान ने, सिर का ताज बना दिया। ये अनुभव सच्चाई का अंदर का है कि सचमुच बाबा ने मेरी इतनी सुंदर पवित्र स्वच्छ निर्मल जीवन, कलयुग में जहां विकारों की आग लगी हुई है, ये सन्यासी लोग अनुभव कर रहे थे, सुना रहे थे आज, कि एकदम भिन्न दिखाई दिया मुझे कि कहां सारे दुनिया में आग है विकारों की और कहां उससे भिन्न स्थान पर मैं आ गया। अनुभव होता है आते ही, ये भूमि वो अनुभव करा रही है। हम सभी भी इतना बाबा के लव में, बाबा प्यार में समा जाएं, जो मेहनत शब्द ही अविद्या हो जाए, भूल जाए कि मेहनत मैं कर रहा हूं। योग लगाने की मेहनत क्यों मेहनत है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सूक्ष्म में अवज्ञाएं मेहनत कराती है, कोई न कोई कमजोरी मेहनत कराती है, किसी न किसी संस्कार के वश होकर के पर वश स्थिति मेहनत कराती है। अगर हम मेहनत मुक्त होना चाहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ, विधि पूर्वक पुरुषार्थ बाबा ने सुनाया है, जिसे मैं यहां जब आके बैठा, एक ही सिर्फ संकल्प लिया, योग बहुत मजेदार अच्छा लग गया, अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं एक आभा मंडल के अंदर एक चमकती हुई ज्योति इस ब्रह्मकुटी में बैठी हूं। कितनी अच्छी विधि है। अब ऐसे इधर उधर के संकल्प करने की जरूरत नहीं है योग में, लेकिन जब बैठते हो तो कम से कम इतना तो निश्चय करके बैठो, मैं कौन हूं, चारों ओर मेरे लाइट है, उस लाइट के बीच में मैं चमकता हुआ हीरा मणि इस भ्रकुटी आसन पर बैठा हूं। अगर ये देह से डिटैच होने का कुछ सेकंड भी अनुभव हो गया, आप देखेंगे आपका कनेक्शन सहज जुट जाएगा। जो मेहनत कहते हो, योग में मेहनत लगती, क्या करूं, उसका कारण है हम बहुत समय तक व्यर्थ और व्यक्त बातों में रहते हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, अनेक रस, जिसको बाबा कहता बच्चे कन रस, ये मन रस, ये तन रस, जो भी कुछ रस हैं, इन रसों से अपनी बुद्धि को बाहर निकालो। अगर बाबा के प्यार का रस अनुभव कर लिया आत्मा ने, तो सब रस नीरस है। इसलिए बाबा के प्यार में समा करके आत्मा मेहनत से सहज मुक्त हो सकती है, कोई भी मेहनत है ही नहीं, इतना सहज योगी जीवन है, बाबा मिल गया, बाकी क्या चाहिए। लेकिन बाबा का मिलने का सुखद अनुभव बार बार आत्मा करती रहे, लगे कि मैं किसका हूं, कौन है मेरे साथ, सिर्फ यही एक वाहन अगर चलते फिरते और कर्म करते रहता है, तो बहुत सी व्यर्थ और व्यक्त बातें अपने आप समाप्त हो जाती, क्योंकि बाह्य मुक्ता अनेक प्रकार की बातों को, जो पॉजिटिव बातें हैं उसमें बाह्य मुक्ता अपना नेगेटिविटी प्रवेश करा देती है। इसलिए बाह्य मुक्ता में जहां तक हो सके, कम से कम अभी आप सभी यहाँ 8-10 दिन रहेंगे, सेवा में आए हैं, मुझे बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, बिल्कुल अपने मन और बुद्धि को, मुख को व्यर्थ बोल चाल से मुक्त रखना है, चलने नहीं देना संकल्पों को, क्यों चले, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या, कुछ भी हो रहा हो, बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, मुझे अपनी कमाई करनी है, कदम पर कदम रख करके बाबा के दिनचर्या अनुसार चलना है और अपनी कमाई जमा करनी है। तो मैं समझता हूं कि सहज मेहनत मुक्त स्थिति का अनुभव, सहज योगी जीवन का अनुभव, प्राप्ति संपन्न जीवन का अनुभव अगर हम यहां कर लेंगे, तो ये जीवन सदा काल की है, न कि जीवन माना कोई 1-2 घंटे वाली नहीं, सदा काल के लिए वो स्थिति बन जाएगी। तो चलते फिरते इस भूमि पर बाबा की सकाश का अनुभव करो, बाबा की करंट का अनुभव करो और बाबा के प्यार में इतना समा जाओ कि जो कोई संस्कार हो, कहते हैं प्यार में कुर्बानी करना सहज होता है। कहीं किसी से प्यार हो जाता है तो लोग अपने शरीर को भी हवन कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। हम सभी भी बाबा से सच्चा प्यार रख करके, बाबा के प्यार में समा करके ऐसा रहे जो कमियां और कमजोरियां अपने आप विदाई ले लें। भले संस्कार हैं पिछले जन्मों के, लेकिन आत्मा अपने ऊंची स्थिति में बाबा के संग रहेगी तो बाबा के संग का रंग लग जाएगा। और सबसे श्रेष्ठ संग जो इस समय जरूरी है, बाबा को कहते हैं बाबा है पतित पावन। पतित पावन बाबा का संग लग जाए जो ये आत्मा एकदम पावन बन जाए, कंचन बन जाए, शुद्ध बन जाए, बुद्धि एकदम निर्मल बन जाए, बाबा जैसी बन जाए, जैसे बाबा की चमक है, लाइट है, ऐसी मुझ आत्मा की बन जाए बाबा के संग से। इतना समय मैं बाबा के साथ रहूं, अपने साथ बिठा लूं भ्रकुटि के आसन पर बाबा को, कभी मैं बाबा के पास जाके बैठ जाऊं, कभी बाबा को अपने पास बिठा दूं। करना अनुभव, यहां पर नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। ऐसे सुंदर वातावरण में और सब रस, कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट न रख करके, उन सब से निरस स्थिति, उसको मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बाबा के प्यार का रस, आनंद का रस, और उस रस का चलते फिरते अनुभव करो। ऐसे नहीं मैं बैठ करके ही करूं, कर्म में भी करके देखो, सेवाएं कर रहे हैं लेकिन उस बाबा के प्यार के रस में समाये हुए हैं। बाबा की करंट आ रही है और मैं आत्मा उस करंट से शक्ति संपन्न स्थिति का अनुभव कर, मेरे नयनों से वो सर्च लाइट अन्य आत्माओं को मिल रही है। ये अभ्यास करके देखना, बहुत मजा आएगा और लगेगा इस जीवन में कोई भी प्रकार की मेहनत तो है ही नहीं, बहुत सहज सरल जीवन है। वो जीवन ही माया जीत है, उसको बाबा कहेगा इसको माया जीत भाव का वरदान मिल गया है। तो हम सभी बाबा के घर से माया जीत भाव, माया जीत बन करके जाएं, मेहनत मुक्त बन करके जाएं, विघ्न विनाशक बन करके जाएं, अमर भाव बने और हमारे हर कदम में सफलता हमारा साथ दे, सिद्धि स्वरूप बन जाए आत्मा। जो संकल्प उठे वो सिद्ध होने लगे, इतना सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाए, वही बन सकती है। विधि उसकी भी बता देता, ऐसा नहीं कि सफलता स्वरूप भव, विधि है उसकी भी। क्या विधि है? बाबा उसकी विधि सुनाते हैं कि सफल करो तो सफलता मूर्त बनोगे। सफल हो, श्वास सफल हो, संकल्प सफल हो, बोल सफल हो, अगर सब कुछ मैं सफल कर रहा हूं, कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अवश्य मिलेगी। लेकिन हम सफलता मांगते हैं कि इस कार्य में मुझे सफलता मिले, सफल नहीं करते हैं। तो अगर हम अपने संकल्पों को, श्वासों को, समय को, संपत्ति को, हर खजाने को सफल करेंगे तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनुभव होने लगेगी कि ये वरदान मेरे साथ साथ है, उठता है संकल्प और हो जाता है। तो अभी बाबा के इस वरदानी भूमि से, इस बेहद घर से आप सभी ये वरदान लेकर के अपने जीवन में उनको उतार करके अनुभव करके जाना, इससे लगे सहज योगी ये जीवन है और इस जीवन से अनेक आत्माओं की सेवा तो अपने आप होगी। बाबा कहता कई बच्चे सेवा के पीछे इतना भागते हैं जो खाने के लिए भी फुर्सत नहीं होती, अपने लिए भी फुर्सत नहीं होती। तो ऐसी सेवा से कोई भी फायदा नहीं है। अगर स्व की स्थिति डिस्टर्ब हो गई या दूसरी आत्माएं डिस्टर्ब हो गई तो उसको सेवा नहीं कहते। सेवा माना, सेवा का अर्थ क्या है? सेवा जहां से सुख का अनुभव हो। सेवा शब्द ही सुख है, सुख देना और सुखी होना। अगर कोई सेवा करे और दुखी हो जाए और दूसरों को दुखी कर दे, तो सेवा किस चीज की? बाबा कहते हो सेवा छोड़ दो। तो सेवा माना सुख की अनुभूति हो, सुख स्वरूप आत्मा रहे और दूसरों को सुख का अनुभव कराए। तो हम सभी अभी आधा घंटा योग करेंगे, किसी स्थिति में बैठ करके, बहुत सुख स्वरूप स्थिति में बैठो, आनंदित स्थिति में बैठो, ऐसे लगे कि जैसे बाबा के सुख की किरणें, आनंद की किरणें आ रही हैं और मैं आत्मा बिल्कुल आनंद विभोर होकर के बाबा के प्यार में समा करके बैठी हूँ और बाबा की करंट का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति।
कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है।